मेरे पीछे दोहराइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। तो ये जो गीत हैं जिसकी शुरुआत ही इस प्रकार से है, भज हो रे, क्या है अगला शब्द, आप अपना वो अपने साथ रखिए जो चित है, हमें उसके थ्रू हम सीखेंगे। हाँ, तो गाने के लिए नहीं है, केवल उसे सीखना है। तो ये जो गीत है जिसकी शुरुआती है भज हो रे मना श्री नंद नंदना, तो वास्तव में देखा जाए इस गीत में मन शिक्षा प्राप्त होती है। किसको शिक्षा दी जा रही है? मन को शिक्षा दी जा रही है। अब इस भौतिक संसार में हमें ज्ञात है कि हम अलग अलग चीजों को शिक्षा देते हैं। इवन एक बार एक भक्त हमारे बता रहे थे कि वो नहीं चाहते थे अपने घर में कुत्ते को रखना, लेकिन पत्नी हाथ धो के पीछे लग गई। पत्नी ने कहा नहीं, कुत्ता घर में होना ही चाहिए। तो ठीक है, पत्नी की जो आज्ञा है वो सर के ऊपर उन्होंने धारण किया और घर में कुत्ते का प्रवेश हुआ। तो अब ये जो पतिदेव हैं वो प्रतिदिन चले जाते थे ऑफिस में, अभी पत्नी के पास क्या था, अभी नया खिलौना कुत्ता था। आजकल इतनी सारी चीजें हैं घर में, हाउसवाइफ अपने आप को इतना बिजी रखती है, एक तो टेलीविजन है और उसमें एक कुत्ता भी आ गया नया घर में। तो अभी इसने उसको प्रशिक्षण देना शुरू किया, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। हम बच्चों को सिखाते हैं, नौकर को सिखाते हैं, कितनी चीजों को सिखाते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं। बचपन से हम सीखते रहते हैं, मृत्यु तक व्यक्ति सीखता है, और वास्तव में सीखना चाहिए, लेकिन क्या सीखना चाहिए वो उसे पता नहीं है। कौन सी शिक्षा इस जीवन में लाभप्रद है उसका उसे ज्ञान नहीं है, और वास्तव में वो शिक्षा उचित है जो शिक्षा हमें जीवन के अंत समय में परम लाभ प्रदान करे। अंते नारायण स्मृति, जिस शिक्षा से अंत में भगवान का स्मरण हो वो शिक्षा क्या है, उपयोगी है। तो अभी इस पत्नी ने जब घर में कुत्ता रखा तो उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर रही थी कुत्ते को, कि कुत्ते खड़े हो जाओ, हैंडशेक करो, जाओ न्यूज़पेपर लेके आओ, करते ना कुत्ते। अब ये महीना बीत गया, कुछ हो ही नहीं रहा था, कुत्ता कुछ सीख ही नहीं रहा था। तो ये जब परेशान होकर रोज पतिदेव ऑफिस से आते थे और उनको भूख लगती थी या जो भी कार्य था, और देखा तो पत्नी हमेशा कुत्ते के साथ उसको ट्रेनिंग देने में बिजी है। अभी पति तो इतना परेशान होके आता था ऑफिस से, तो पत्नी को कहने लगा कि देखो ये सीखेगा ही नहीं, कुछ लाभ नहीं उसको प्रशिक्षण देने से। पत्नी ने कहा पहले आप भी तो वैसे ही थे, अभी कुछ लंबे समय के बाद आपको भी क्या हो गई है, आदत हो गई है, या आप भी ट्रेंड हो गए हो मेरे द्वारा। तो मतलब हर समय शिक्षा हम दे ही रहे हैं किसी ना किसी को, कुत्ते से लेकर कितनी सारी चीजों को दे रहे हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि मेरे मन को शिक्षा की आवश्यकता है? किसको? मन को। तो ये जो गीत है जहां मन को शिक्षा दी गई है, और वास्तव में सारे उपदेशों का सार, सारे शास्त्रों को जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना उसको निचोड़ा जाता है मशीन में तो जूस निकलता है, या फिर कपड़े को निचोड़ने से धोने के बाद पानी सारा निकलता है, उसी प्रकार से यदि देखा जाए सारी शिक्षाओं को निचोड़ा जाए तो वो निचोड़ कहाँ है? इस गीत में है। ये कोई सर्वसाधारण गीत नहीं है, और ये गीत ये महान भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, उनके द्वारा उच्चारित है, उनके हृदय से निकला हुआ ये महान देन है, शिक्षा है मन को। तो हमें उन गीतों को नहीं सुनना चाहिए, उन गीतों को नहीं गाना चाहिए जो भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा न दिए गए हो। अभी लोग वृंदावन जाते हैं या भगवान के नाम पर कितने सारे गीत गाते रहते हैं, राधे राधे जपा करो चले आएंगे, क्या है बिहारी, और भी बहुत सारे गीत हैं। हाँ, तो ये सब गीत जो लोग गाते हैं बजाते हैं, उन गीतों से कभी शुद्धि नहीं होगी, और उन गीतों से भगवान के प्रति हमारे प्रेम और शरणागति और सेवा की भावना बढ़ेगी नहीं। तो इसी कारण से ऐसे गीतों को सुनना भी नहीं चाहिए। मैं भी कानों को बड़े आनंद देने वाले लगते हैं मनोरंजन, तो मनोरंजन नहीं करना है हमें। किसका रंजन? कृष्ण रंजन। किसका? कृष्ण। हम तो जीवन बिता रहे मन को रंजन करने के लिए, करने में, मन को आनंद देने में। रंजन का मतलब है आनंद प्रदान करना। तो हमें वास्तव में किसको आनंद प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए? कृष्ण को। तो ये जो ऐसे गीत हैं जो सांसारिक लोग गाते हैं, और जिन्होंने उन गीतों को गाकर केवल अपना धन कमाने का व्यवसाय बनाया है, ऐसे गीतों को गाकर और सुनकर व्यक्ति को कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला। लगेगा कि हाँ ये बड़ा भक्ति युक्त गीत है। हम छोटे थे तो रेडियो में सुबह सुबह ऑन करते थे तो वो भक्ति संगीत चलता था, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स ना, वहाँ के सेंट्स, महाराष्ट्र के सेंट्स के संतों के गीत। तो वैसे हमें लग सकता है कि बहुत अच्छे आध्यात्मिक गीत है जिनको गाए गुनगुनाए, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं होने वाला, हमारे अंदर शुद्धि नहीं होने वाली, वैसे कि वैसे हम बने रहेंगे। अब देखो हजारों लोग गा रहे हैं, अपने कार्स में बजा रहे हैं ऐसे गीतों को जिनमें कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, तो ये शास्त्र कहते हैं कि ऐसी चीजों को सुनना गुनगुनाना आवश्यक नहीं है। तो ऐसे भगवान के जो महान भक्त हैं, जिन जो परंपरा में हैं, उनके हृदय में भगवान के प्रति जो सेवा की भावना है, ऐसी सेवा की भावना इन गीतों के रूप में प्रकट होती है उनके मुख से। और जब ऐसे गीतों को हम गाते हैं, सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, तो उससे हमारी शुद्धि होती है, और ऐसे गीतों में शास्त्रों का सार है। तो ये जो गीत है ये वास्तव में घाघर में सागर है। घाघर समझते ना, छोटे से पात्र में पूरा उसको भर दिया, सागर को भर दिया, वैसे है। ये कोई सर्वसाधारण छोटी छोटी लाइंस नहीं है। और आप सोचो, और हमें शुरुआत करनी चाहिए सुबह उठते ही किसको शिक्षा देने की? अपने मन को। सबसे अधिक लोग किससे परेशान है? किससे? मन से। मतलब अपने आप से ज्यादा परेशान है व्यक्ति। वो व्यक्ति सोचता है इसके कारण मैं दुखी हूँ, पड़ोसी के कारण, बॉस के कारण, बच्चों के कारण, पत्नी के कारण, लेकिन सबसे अधिक उसकी यातना किससे है? मन से है। और जो अनकंट्रोल्ड माइंड है वो सबसे अधिक भयानक है। हाँ, मतलब सबसे अधिक नारकीय जीवन प्रदान करने वाला है। इसी कारण से भक्तिमय जीवन में इस मन की प्रमुख भूमिका है। कौन सी भूमिका है? प्रमुख। इसलिए भगवान ने पूरा भगवत गीता का उपदेश दिया। भगवान हमसे कुछ भी नहीं मांग रहे भगवत गीता में, बारंबार भगवान को एक ही चीज चाहिए हमसे। क्या मांग रहे कृष्णा? मन मना भव मत भक्तो। अरे अर्जुन, आपका मन मुझे दे दो। भगवान हमेशा 9वें अध्याय में 18वां अध्याय एंड करते करते फिर से भगवान बोले मन मना भव मत भोक्ता, अर्जुन तुम्हारा मन चाहिए मुझे। लेकिन हम भगवान को सब कुछ देंगे, लेकिन भगवान मन आपको नहीं दे सकते। हम ये दान ले लो, कुछ नारियल ले लो, फूल ले लो, लेकिन मन नहीं देंगे। मन देंगे तो फिर कृष्ण के हो जाएंगे। हमें कृष्ण का नहीं होना है, हमें सारे संसारिक लोगों का होना है, तो कैसे संभव है? इसलिए भगवान हमसे मन की आकांक्षा करते हैं, मन मांगते हैं। इसी कारण से भगवान कहते हैं इस संसार में व्यक्ति के दुख का जो कारण है वो मन है। इसलिए कहते वो संघर्ष कर रहा है। मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, कर्षण संघर्ष। मन छह इंद्रियों के संग में क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है। हमारी ये पांच जो इंद्रिया, मन को छठा इंद्रिया बोला है भगवान ने गीता में। तो ये जो पांच इंद्रिया है वो हमेशा कुछ ना कुछ मांगती है। आंखें सुंदर चीजों को देखना चाहती है, कान संगीत को सुनना चाहती है, जीवा वहां पुरानी दिल्ली के कुछ गोलगप्पे खाने की इच्छा रखती है। तो ऐसी कुछ ना कुछ ये इंद्रिया हमें भगा रही है और मन उसके साथ लगा रहता है, तो संघर्ष चल रहा है। तो भगवान कहते हैं ऐसा जो मन है वास्तव में सारे इंद्रियों का क्या है? राजा है। इसलिए अमृत बिंदु उपनिषद में कहा है मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य के बंधन का और मुक्ति का कारण क्या है? मन है। और यदि इस मन को व्यक्ति वश में कर लेता है, मतलब वश में करना मतलब विषयों से दूर रखता है इस मन को, तो व्यक्ति मुक्त हो सकता है। बंधन क्या है? ये मन सदैव भोग करने की भावना में लगा पड़ा है हमेशा। इसलिए कहते शास्त्र मन में इतनी इच्छाएं आती हैं, दिन में 30,000 से ज्यादा डिजायर्स इच्छाएं इसमें इस मन में उठती हैं, और उसमें से एक भी व्यक्ति पूरी करता है, एक इच्छा भौतिक इच्छा पूर्ति करोगे तो उससे कई और भौतिक इच्छाएं क्या होती हैं? जन्म लेती हैं। अभी हम देख रहे थे, मतलब कोई व्यक्ति मोबाइल खरीदता है तो एक इच्छा पूर्ति हो गई, फिर उसके लिए उसको उसका कवर खरीदना पड़ेगा, है ना, कवर फिर पसंद नहीं आता, फिर उसके लिए कई कलर्स ढूंढता है, उतने भी काम नहीं बनता, फिर कई सारी चीजें होती हैं, उसमें 3GB चाहिए, 4GB चाहिए, कई सारे, फिर वो कार्ड भी 1GB का कार्ड से काम नहीं चलेगा, उसको 64GB चाहिए। मतलब उसने एक इच्छा पूर्ति की कि बस मोबाइल चाहिए मुझे, जिसके द्वारा मैं क्या करूँ, अपने प्रियजनों से बात करूँ। लेकिन उसके साथ कितने सारे डिजायर, बाद में पता चलता है कि मोबाइल जो 5,000 का था वो 10,000 हो गया उसका खर्चा। तो वही है भौतिक जगत की इच्छाओं का ये परिणाम है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ऐसा मन, भगवान गीता में कई स्थानों में बोलते हैं, भगवान 6वें अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन उद्धरेद आत्मनः, कि इस मन का सहायता लेके अपना उद्धार करो। मन को मित्र बनाओ या शत्रु बनाओ, भगवान कहते हैं मित्र बनाओ जिसकी सहायता से तुम इस संसार से मुक्त हो सकते, और शत्रु बनाना बहुत विपदामय है। अब सोचो, शत्रु बनाना मीन्स मन को अनकंट्रोल मन के साथ रहना। अनकंट्रोल मन की तुलना बंदर से की गई है, इससे एक स्थान में नहीं बैठता। जैसे अभी आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आपका मन कहाँ है? सोचिए कहाँ है, यहाँ है? नहीं है, वो भाग रहा है बाहर, वो गीता भवन तक पहुंच गया होगा या और कहाँ गया होगा। तो ये जो मन है वो बंदर की भांति है। बंदर और छोटा बच्चा एक ही है। वो छोटा सा बालक कभी एक स्थान में नहीं बैठेगा। माताओं को पता है बच्चा छोटा होता है तो कितना तकलीफ देता है। हाँ, तो वैसे ही बंदर के भांति हमारा मन है जो हमें हमेशा नचाता रहता है। इसी कारण से हम अपना यदि हित चाहते हैं तो हमें अपने मन को क्या करना पड़ेगा? मित्र बनाना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन ने दोनों हाथ ऊपर किए। कितने हाथ ऊपर किए? भगवान ने कहा, इतना सब बोला, अर्जुन कहता है चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। हाँ हे कृष्णा, ये जो मन है चंचल है, कैसा है, चलता ही रहता है, चंचल। हाँ चंचल ही, जैसे लक्ष्मी का एक नाम चंचला है, लक्ष्मी देवी का एक नाम क्या है, चंचला है, इसलिए भगवान को कहते हैं चंचल पति। कृष्ण क्या है, चंचल पति है। हाँ मन है वो, इसलिए वो कहते हैं, अर्जुन कहते हैं चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़। ये जो मन है अत्यधिक चंचल है, प्रमाथि मीन्स पागल है। वो कहते हैं इतना शक्तिशाली है, हे कृष्णा मैं तूफान को रोक सकता हूं लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता। अर्जुन, अर्जुन की योग्यताओं के बारे में आप पढ़ो, अर्जुन के जैसा क्वालिफाइड व्यक्ति कोई नहीं था। उनके पास इतनी योग्यताएं थी, शारीरिक बल हो या किसी भी प्रकार की योग्यता से, उस समय में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धन व्यक्ति थे वो। लेकिन उन्होंने भी क्या कर दिया, इस मन के सामने घुटने टेक दिए, हाथ ऊपर किए, बस कृष्णा अभी नहीं हो सकता मुझसे। हाँ इसलिए जो पागल मन के साथ व्यक्ति रहना चाहता है, वो व्यक्ति अपने अहित को ही आमंत्रित करता है। तो ऐसे पागल मन के साथ कौन कौन रहना चाहता है आप में से? हाँ हम कोई नहीं चाहते। पागल मन जिसका है वो देखो क्या क्या समाज में कर बैठते हैं, कितने सारे अनवांटेड एक्टिविटीज हैं जिनमें लोग पागल की तरह लगे हुए हैं। इतने सारे न्यूज़पेपर में हम घटनाएं पढ़ते हैं, कितने एक्सीडेंट्स है, रेप्स है और कितनी सारी चीजें हैं। इन सब का कारण क्या है? पागल मन, दूषित मन, अनकंट्रोल्ड माइंड। तो इतना प्रबल है, तो ऐसे पागल मन के साथ हमें नहीं रहना है। और इसलिए ये जो भक्त हैं, जिन्होंने गीत लिखा, हाँ ये लगभग 400 साल पहले हुए हैं, जिनका नाम सबसे आखिरी लाइन में दिया है, कौन बताएगा मुझे? हाँ गोविंद दास, उनका नाम था गोविंद दास कविराज। कविराज मीन्स बहुत मधुर सॉन्ग्स बनाते थे, उनको ये उपाधि टाइटल दिया था एक आचार्य जी भगोस्वामी ने। तो ऐसे गोविंद कविराज वो एक महान भक्त थे, और वो सबसे पहले लिखते हैं भज। भज मीन्स भजन करो, क्या करो, भजन करो या भजनीय। तो ये भक्ति शब्द है वो ये भज शब्द से आता है। भज शब्द से कौन सा शब्द बनता है? भक्ति। और भज शब्द का अर्थ है सेवा करना। तो वो कहते हैं कि भज हुरे मना श्री नंद नंदन। ये कब उन्होंने लिखा, बल्कि ये जो स्वयं गोविंद कविराज थे, ये दुर्गा के महान भक्त थे। किसके भक्त थे? दुर्गा देवी के बिल्कुल पक्के उपासक। और ऐसे दुर्गा देवी की कई सालों तक उपासना आदि की, कहते हैं कि दुर्गा देवी उनसे ऐसे बातें करते थे। और जब उनका मृत्यु का समय आया, वो बीमार पड़े और बेड पर लेटे हुए थे मृत्यु शैया पर, और तब उन्होंने दुर्गा की याचना की, हे दुर्गा माँ, दुर्गा माता, दुर्गा देवी, आप मुझे बचाओ इस कष्टमय स्थिति से, मुझे इस संसार सागर से मुझे उद्धार करो। दुर्गा माता ने हाथ जोड़े, ये मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि दुर्गा माता के पति स्वयं शिव जी कहते हैं, हाँ मुक्तिर हिरण्यथा रूपम, वो कहते हैं कि ये जो इस संसार से मुक्त कौन कर सकता है, विष्णु रेवन संशया, भगवान विष्णु या कृष्ण के अलावा इस संसार सागर से कोई उद्धार नहीं कर सकता, किसी देवी देवता की ये नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं है। ये देवी देवता सारे भगवान के सेवक हैं। जैसे इन्होंने बोला, दुर्गा देवी ने कहा कि ये मुझसे नहीं होगा, मेरा अधिकार नहीं है, ये एक ही कर सकते, कौन है, कृष्ण, ऐसे बोला उन्होंने। और कहा कि हे गोविंद, तुम मेरी जो सेवा कर रहे हो उसका असली बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है, कि तुम गोविंद या कृष्ण की सेवा करो, उनके नामों का उच्चारण करो। ये सब उनको बोला तो मृत्यु की शैया में उनकी आंखें खुल गई कि मैं तो भ्रम में क्या कर रहा था, इतने साल दुर्गा देवी की उपासना में लगा था। बल्कि देवी देवता आनंदित होते हैं जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा में लगता है। अभी हनुमान जी का उदाहरण लीजिए, कौन सा वार है हनुमान जी का? मैं जब छोटा था तो लोग कहते थे शनिवार हनुमान का था, पता नहीं शायद, लेकिन तो वहां शनिवार था। और अभी मैं रिसेंटली पिछले महीने पूछा कि अभी डे चेंज हो गए क्या, अभी साईं बाबा भी बीच में आ गए ना, तो उनके लिए भी एक डे नियुक्त किया है लोगों ने। फिर कहते अभी शनि जी के बहुत भक्त बनते जा रहे हैं, लोगों के जीवन में कष्ट है, शनि का वार फिक्स हो गया है, तो ऐसे डेज अलग अलग चेंज हो रहे हैं। तो हनुमान के पास लोग जाते हैं सिंदूर लेके और बहुत कुछ लेके और उनके ऊपर लगाते रहते हैं। हनुमान को बहुत कष्ट होता है, कितना कष्ट होता है, बहुत अधिक दुखी होते हैं। हनुमान नहीं चाहते, हनुमान चाहते कि सब लोग किसके नाम का उच्चारण करें, राम, किसकी सेवा में लगे, राम। तो हनुमान के अंडर जितने भी बंदर थे उनको किसकी सेवा में लगाया था उन्होंने, और हम सब भी क्या है, बंदर ही है। हाँ, तो हनुमान चाहते हैं सारे बंदर किसकी सेवा करें, राम, लेकिन हम कहते नहीं, हनुमान जी आप और मैं बस, उसके आगे कुछ नहीं। शिव जी के साथ भी वैसे ही है, शिव जी की भी लोग इतनी आराधना करते हैं लेकिन शिव जी भी दुखी रहते हैं। शिव जी का असली वर क्या है, क्योंकि शिव जी स्वयं राम नाम का जप करते हैं, उनकी पत्नी पार्वती देवी स्वयं हरे कृष्ण मंत्र का जप करती हैं। हाँ, तो वो शिव जी चाहते हैं कि लोग क्या करें, कृष्ण की आराधना करें। तो इस प्रकार से दुर्गा देवी ने इन गोविंद कविराज गोविंद दास को कहा कि कृष्ण ही आराधनीय है, कृष्ण ही एकमेव भजनीय है, उनकी सेवा करो, उनके नामों का उच्चारण करो। तो इनकी आंखें खुल गई और ये ठीक होते ही तब ये गीत उनके मुख से निकला। कौन सा गीत निकला, ये गीत जिसमें उन्होंने पहले लाइन में बोल दिया, भज हुरे मना श्री नंदन नंदन, हे मेरे मन किसका भजन करना है तो किसका भजन करो, नंद नंदन का भजन करो। हाँ, तो हमें भी जानना चाहिए कि वास्तव में भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, कामस्तस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्य अन्य देवता, जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं से मारी गई है, ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अलग अलग देवताओं का आश्रय लेते हैं, उनकी उपासना करते रहते हैं। अब भारत में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, लोगों को डर भी लगता है ना कि अरे क्या होगा, शिव जी क्या करेंगे ना, या फिर गणेश जी, और फिर तो नहीं, वो सारे आनंदित नाचने लगते हैं। कोई जीव कृष्ण की सेवा में लगता है तो देवतागण क्या करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो हम देवताओं के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे हृदय में बहुत अधिक कामनाएं हैं, बहुत अधिक क्या है, इच्छाएं हैं, जिनकी पूर्ति करने के लिए जाते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए, यहां वो कह रहे हैं कि हमारा मन किसके भजन में लगना चाहिए, किसके भजन में, कौन से कृष्ण, नंद नंदन, नंद महाराज के पुत्र वृंदावन में जो कृष्ण निवास करते हैं, ऐसे कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। देवताओं के पास इसलिए हम जाते हैं क्योंकि हम भौतिक भोग करना चाहते हैं, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए, हम कभी भी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करके संतुष्ट नहीं हो सकते, कदापि नहीं। शास्त्र कहते हैं, शंकराचार्य ने कहा अपने एक स्तोत्र में, अंगम गलितम पलितम मुंडम वृद्धा यावत ग्रहित्वा दंडम दशना विहीनम जातम तुंडम तथापि न मुंचति आशा पिंडम। मतलब वो कहते हैं कि अंगम गलितम, मतलब अंग गल गया है, बुढ़ापा आता है तो क्या होता है, सारे स्किन कैसे होती है, गलने लगती है, सुंदरता नष्ट होती है। अंगम गलितम, बुढ़ापा आ रहा है, मृत्यु नजदीक आया है, स्किन सारा गल रहा है। पलितम मुंडम, सर के सारे बाल, नेचुरल हेड शेव हो रहा है, सारे बाल क्या करते हैं, पता ही नहीं चलता कि बाल कैसे उड़ गए। हाँ, मैं कल ही किसी को कह रहा था, मैंने कहा हरि बोल आपके बाल तो वैसे ही जा रहे हैं। हाँ, तो हमें जैसे बुढ़ापा आता है तो बाल क्या होते हैं, अपने आप चले जाते हैं। कोई भक्त कहे कि आपको आपका हेड शेव करते हैं, हम चोटी रखते हैं, नहीं नहीं, हम क्या कहेंगे, नहीं नहीं, लेकिन जो प्रकृति है, नेचर है, वो क्या करती है, सबका मुंडन करती है। अंगम गलितम पलितम मुंडम वृद्धा यावत ग्रहित्वा दंडम। अभी दो पाव से काम नहीं चलता, बुढ़ापा आता है तो हमें क्या लेना होता है, और एक डंडा लेके चलना होता है। और दशना विहीनम जातम तुंडम, दशना मीन्स एक मुंह है जिसमें पूरा क्रिकेट टीम भरा हुआ है दांत। हाँ, वृद्धावस्था आती है तो सारे दांत क्या होते हैं, अपने आप छलांग लगाकर बाहर निकल आते हैं। हाँ, तो ऐसे दांत भी चले जाते हैं। तो शास्त्र कहते हैं, वहां शंकराचार्य कहते हैं, हाँ वो कहते हैं, इतना सब कुछ हो जाता है तथापि न मुंचति आशा पिंडम, लेकिन हाँ और मुझे चाहिए, कामना इच्छा की पूर्ति तभी भी क्या है, खत्म नहीं होती, और चाहिए उसको। इतना सब कुछ हो गया है फिर भी व्यक्ति को चाहिए, नहीं और भी चाहिए मुझे, और चाहिए और चाहिए। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि वास्तव में ये भौतिक जगत की वस्तुएं हमें कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। हमें कोई तुष्टि दे सकता है या संतुष्टि प्रदान कर सकता है तो वो क्या है, भगवत भक्ति है। क्योंकि हम कौन है, भगवान कहते जीव ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये जो आत्मा है ये मेरा सनातन अंश है, सनातन भगवान का अंश है। और आत्मा कोई भौतिक नहीं है, भौतिक वस्तु है के लिए भौतिक वस्तु चाहिए, आत्मा आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक की तुष्टि के लिए उसको क्या चाहिए, आध्यात्मिक चीजें चाहिए। सोचो, क्योंकि आत्मा की जो भूख है सुख की वो बहुत बड़ी है, जिसको कहते अतोषणीय, इतनी बड़ी है इस आत्मा की भूख कि संसार की कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान उस भूख या प्यास को मिटा नहीं सकते। अब सोचो आप रेगिस्तान में हो और रेगिस्तान इतना विशाल है, बीच में आपको डाल दिया और वहां आप बिल्कुल दौड़ रहे हो, थोड़ी देर के बाद आप थक जाते हो, फिर घुटने पर चलने लगते हो, हाँ फिर हाथ पे ऐसे चलते हुए जाते हो, और आपको किस चीज की याद आती है, केवल पानी। रेगिस्तान में क्या याद आता है, पानी। अब इतनी प्यास लगी हुई है और आप तड़प रहे हो वहां सूर्य की रोशनी में, बिल्कुल गर्म हो रहे हो, नीचे रेत की भी गर्मी है, और उसी समय दूर से आपको नीले कलर का हेलीकॉप्टर नजर आता है। क्या नजर आता है, एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, आ रहा है आपकी ओर आ रहा है, उसका कलर कैसे है, पानी के कलर का है, नीला, और उसके ऊपर लगता है कि वो मुझे बचाने आया है। आप सोचते हो किसको बचाने आया है, मुझे, और ये भी इच्छा रहती कि उसके अंदर शायद पानी लाया होगा, अभी इतनी प्यास लगी है। तो देखा कि वो हेलीकॉप्टर इसकी ओर ही आ रहा है और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखा हुआ है WHERE, हाँ पानी, जल, जैसे होता है ना दिल्ली जल बोर्ड में लिखा होता है, टैंकर में लिखा होता है, जल जल वहन की सेवा। तो वैसे वो आ गया, उसके पास लैंड हो जाता है, अभी इसको लगता है कि बस अभी कैसे, तो खड़ा हो जाता है, मरने वाला था, खड़ा होकर खड़े होकर देखता रहता है उसकी ओर, अभी कोई ना कोई उतरेगा, एक पूरी 5 लीटर की बोतल लेकर पानी की, लेकिन एक बिल्कुल सफेद कपड़े डालकर एक व्यक्ति उतरा और जिसके हाथ में एक छोटा सा टीस्पून था, चम्मच था, क्या था, चम्मच, और उसमें पानी था। वो आता है तेजी से और इस व्यक्ति के मुंह में डालता है, फिर हेलीकॉप्टर लेके चला जाता है। उसकी प्यास तुष्टि होती है, उसके प्यास क्या होती है, और बढ़ती है, और दुखी हो जाता है। तो वैसे ही हमारी स्थिति है, इस संसार की जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, वो वैसे ही है, वो टीस्पून में फीडिंग, उससे हमारी कभी भी तुष्टि या संतुष्टि होना संभव नहीं है। इसी कारण से हमें वास्तव में आत्मा की जो भूख है वो आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक भूख तभी पूर्ति हो सकती है जब वो किसका भजन करेगा, नंद नंदन कृष्ण का। इसी कारण से सबसे पहले वो कहते हैं भज हुरे मन श्री नंद नंदन, आप क्या करो, नंद नंदन जो कृष्ण है उनका भजन करो। इसलिए शास्त्र कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति, अरे मूर्ख व्यक्ति किसका भजन करो, गोविंद का भजन करो, शास्त्र कहते हैं। लेकिन हम कहते नहीं, गोविंद का भजन नहीं करेंगे, किसी और का भजन करेंगे। भजन का मतलब है भक्ति, और भक्ति का मतलब क्या है? प्रेममय सेवा। अब जिसकी सेवा करते हो उससे आप आसक्त हो जाते हो, उससे प्रेम हो जाता है, और सेवा से हमें आनंद की अनुभूति होती है। इसी कारण से वो कहते हैं कि क्योंकि हमारा मन जब लगेगा तो फिर हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। इसी कारण से वो कहते हैं कि हे मेरे पागल मन, आप नंद नंदन का भजन करो। क्यों करो उनका भजन? क्योंकि वो क्या प्रदान करने वाले हैं? अभय। अगला शब्द क्या है वहां? क्या है अगली लाइन? अभय चरणारविंदरे। ऐसे नंद नंदन कृष्ण के जो चरण है वो अभय प्रदान करने वाले हैं। अभय अमृत विशोक। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि ऐसे जो चरण है वो भय से मुक्ति देने वाले हैं। हम इस संसार में हर समय भयभीत हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाता है इवन घर में भी, तो अपने घर में भी व्यक्ति को क्या लगता है? भय लगता है। कितना डरता है व्यक्ति, हमें हर समय भय है। और कितनी प्रकार का भय हमारे जीवन में है, भागवतम कहता है कि क्यों भय है, भय का कारण क्या है? कारण यह है कि भगवान के अलावा किसी और वस्तु में, व्यक्ति में और स्थान में हमारा मन लग जाता है तो हमारे जीवन में भय शुरू होता है। भयम द्वितीया अभिनिवेशत साथ, मतलब द्वितीया मीन्स एक, भगवान एक है, जिनके अलावा, भगवान के अलावा दूसरे वस्तु में मन लगता है तो फिर हमारे जीवन में भय शुरू हो जाता है, भयभीत रहते हैं। और हर एक व्यक्ति, इवन अपने जॉब ना छूट जाए उससे भय है, पत्नी बच्चे दूर ना जाए उससे भय है। कितना भय है एवरीडे, प्रतिदिन हमारे जीवन में भय ही भय है, जिससे हम भयभीत रहते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं इस संसार में हर एक व्यक्ति भयभीत है। भोगे रोग भयम, पहला भय कौन सा है? कई प्रकार के भय की चर्चा की है, तो उसमें पहला भय वो बताते हैं भोगे रोग भयम। जो भोग करता है उसको किसका भय रहता है? रोग ना हो जाए, बीमारी ना आ जाए, बहुत ज्यादा खाऊंगा तो लूज मोशन ना हो जाए। कितना सारा भय है हमें। जैसे ही संसार का कुछ भी भोग करते हो आप, तो उससे आपको क्या मिलने वाला है? रोग, या रोग का भय है। फिर वो कहते हैं कुले चुति भयम। कुले चुति भयम मीन्स कोई बड़े कुल का है तो उसको भी डर लगता है कि मेरा कुल नीचे ना गिर जाए। जैसे एक पत्नी थी, जो जिसके पति भगवान के भक्त बन गए थे और उनको बड़ा साधुओं से प्रेम था, साधु लोग उनके घर आते जाते रहते थे और ये साधु उनकी सेवा करते थे, उनसे उपदेश सुनते थे। तो फिर एक दिन पति जब ऑफिस चला गया तो पत्नी ने सोचा ये हमेशा इन साधुओं के संगति में, ये मेरा पति भी क्या ना बन जाए, फिर से नहीं, क्या ना बन जाए, भक्त ना बन जाए, चला ना जाए, साधु ना बन जाए। तो पत्नी को भय था, जैसे कई बार यहाँ कहते ना हरे कृष्ण वाला बन गया वो आजकल, पत्नी जब भक्त नहीं होती तो पति के बारे में वो अभी माला फिरते रहते, माला जप करते, तो वैसे उनको भय था। और ये पति ऑफिस गया था, पत्नी घर में थी तो साधु लोग आ गए घर में। अभी पत्नी ने सोचा साधु आए हैं तो ये साधुओं से छुट्टी, परमानेंटली साधुओं से अलग कर देना चाहिए मेरे पतियों को, क्योंकि साधु सारी समस्या की जड़ है। घर में जो क्लेश है वो किसके कारण है? पत्नी सोच रहे थे साधुओं के कारण, लेकिन उसको पता नहीं है। तो ये आ गए साधु महाशय, उनको बैठने के लिए दिया, वो बैठ गए सोफा में, और पत्नी किचन में थी, किचन से आ गई, तेजी से आ गई, और क्या लेके आ गई? चिमटा, चपाती को उल्टा करते ना, क्या करते, चिमटा लेके आ गई, लेके आ गई और तेजी से उनके सामने, साधु देखे उनके सामने क्या किया, ऐसा जो सोफा का क्या कहते इसको, कुशन के नीचे छुपा दिया। तो एक महाशय साधु ने पूछा माता जी क्या कर रही हो? कहती है वो कि ये जो चिमटा है वो मैं छिपा रहे हूँ, क्योंकि मेरे वो साधु नए ही साधु थे, तो उन्होंने, पत्नी ने कहा, उस स्त्री ने कहा कि मैं ये चिमटा छिपा रहे हूँ क्योंकि मेरे पतिदेव जैसे आते ऑफिस से और उनको कोई साधु नजर आता है तो तुरंत चिमटा मांगते हैं, और वो भी कैसे, गैस के ऊपर गरम किया हुआ, और दौड़ते हुए साधु की नाक पकड़ते हैं। तो साधुओं का तो बिल्कुल पसीने छूटने लगे, वो वेट कर रहे थे किसी पति ना आ जाए। अभी वो उस गांव में नए थे बेचारे, और वो थोड़े साधु वृत्ति का व्यक्ति, तो किसी ने कहा वो बड़े अच्छे व्यक्ति, उनके घर जाइए आप, पानी भोजन आपको मिलेगा, रहने की व्यवस्था होगी। तो ये पत्नी ने ऐसे किया, तो उसी समय क्या हुआ, तो वो उन्होंने कहा कि अभी उनका आने का समय हो गया है। तो ये इन्होंने कहा अभी कुछ नहीं चाहिए आपके घर का, पानी नहीं कुछ नहीं, हम भागते, हाँ अपनी जान बचाना बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाक को बचाना। वैसे भी नाक इसका निशानी है ना, आदर सम्मान और गर्व आदि का। उन्होंने कहा अपनी नाक बचाए तो सब बच जाएगा, तो भाग गए, जा ही रहे थे। तो पतिदेव तो आए गए उसी समय दूसरे रास्ते से, और उन्होंने कहा साधुओं को देखा तो उनके हृदय में सेवा का भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा अरे, पत्नी को कहा कि ये कब आए थे साधुगण, और उनको कुछ पूछा, सेवा वगैरह की कि नहीं, पानी भोजन आदि दिया कि नहीं। उन्होंने कहा आजकल के साधु भी ऐसे होते हैं ना, घर आए तो कुछ मांगे तो क्या मांगे, वो कहते आपका चिमटा चाहिए, क्या मांग रहे थे मुझसे। उन्होंने कहा अरे, साधुओं ने कुछ चिमटा मांगा जो 20-30 रुपए की उसका कीमत होगी, वो तुम नहीं दे सके तो तुम्हारा जीवन क्या लाभ है, तो कहा रखा है वो चिमटा दे दो मुझे। तो उसने उठाया चिमटा और वो साधु बेचारे आगे जा रहे थे, और वो चिमटा पकड़कर दौड़ते हुए जा रहे थे कि ये आपके लिए है। साधुओं को लगा ये रियली पकड़ने आ गया नाक। तो वो साधु को ना और तेजी से भाग रहे थे। तो इसको कहते हैं कुले छुति भयम, मतलब पत्नी को भी भय लगता है कि मेरा पति हाथ से छूट ना जाए, तो ये कहते हैं कुल नीचे ना आ जाए। फिर एक भय है वित्ते नृपाला भयम, जिसके पास धन है ना वो हमेशा अपने जेब में हाथ डाल के देखता रहता है, डर लगा रहता है कि कोई चोरी तो नहीं कर ली। अभी सोचो मोबाइल है, हम लोग कितनी बार जेब में हाथ डालते कि नहीं, वो अपनी जगह शांत है। और इवन मेट्रो में भी किसी और के मोबाइल की घंटी बजे तो हम सोचते अपने ही फोन की घंटी बज रही है। तो मतलब वित्ते नृपाला भयम, जिसके पास धन है घर में बैंक में एटीएम कार्ड में, सबको भय लगा रहता है। ऐसे शास्त्र कहते भय के बहुत सारे ये हैं, प्रकार है। माने दैन्य भयम, अभी जिसको हमेशा ही मान सम्मान की आदत लगी है, उसको थोड़ा सा भी मान सम्मान ना मिले उससे डर लगा रहता है। उसे क्या लगा रहता है, अरे मुझे मान सम्मान तो नहीं, वो भयभीत रहता है कि मेरा जितना रेपुटेशन है, मान है, सम्मान है, वो वैसे के वैसे होना चाहिए, उससे कम नहीं। आप फैमिली लाइफ में कितना ये इन सब चीजों से व्यक्ति परेशान रहता है, वो रिलेटिव्स ने मान सम्मान नहीं दिया, वो शादी में ऐसे हो गया, कितने घटनाएं आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये सारी चीजें से व्यक्ति भयभीत रहता है, उसको मान भी कम हो जाए। और फिर बले रिपु भयम, जिसके पास जो हट्टा कट्टा बलवान व्यक्ति है, उसको लगता है मुझसे और कोई बलवान ना हो, हाँ वो उससे डरा रहता है। रूपे जराया भयम, जो बहुत सुंदर है उसको बुढ़ापे का क्या रहता है, भय। जैसे आजकल के मूवी स्टार्स हैं, जो नेता क्या है, अभिनेता अभिनेत्री, हाँ वो हमेशा भयभीत रहते हैं, इसलिए सब प्लास्टिक सर्जरी करते रहते हैं, और थोड़ा सा भी बाल क्या हो जाए, सफेद हो जाए, तो डर लगा रहता है, लोगों के सामने नहीं जाते, सारे बालों को प्रॉपरली डाई किया जाता है। तो इस प्रकार से इस संसार में व्यक्ति हमेशा भयभीत है। शास्त्रे वादी भयम, और एक है भय का प्रकार, जिसको शास्त्र का बड़ा ज्ञान है उसे भी डर लगा रहता है, उससे भी बड़ा शास्त्र विद्वान कोई और ना हो, क्वेश्चन पूछने वाला, शास्त्रार्थ करने वाला। तो इस संसार में हमेशा भय है, जिसके कारण शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? अभय। किसकी? अभय चरणारविंदरे। जो सारे भयों से हमें क्या कर दे? अभय प्रदान करे। ऐसे कौन है? कृष्ण है। इसलिए शास्त्र कहते हैं भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जिसे कहते हैं सारंगानाम पदाम्बुजम। भागवतम में वर्णन आता है कि भगवान के भक्त जिनको सारंग कहा गया है, जो भगवान के चरण कमलों की क्या करते हैं? शरण स्वीकार करते हैं। और आगे का लाइन क्या है? आगे का लाइन कौन पढ़ेगा? दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ए भव सिंदूरे। तो समय तो हो ही गया है, कितने बजे तक? नहीं नहीं 7:30 ना, मैं तो पूरा 8 बजे तक ले सकता हूँ। तो ये गीत तो आज कंप्लीट नहीं होगा, मैं तो केवल पहले 4 लाइन ही पढ़ के आया हूँ, तो वहां तक ही होगा। तो फिर आगे वो कहते हैं दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्या होगा? यहाँ वो कहते आगे आगे की लाइन में कहते तरह ए भव सिंदूर है। इस संसार रूपी सागर को तरना है तो हमें दो चीजों को बड़ा गंभीरता से लेना होगा। दो चीजें कौन सी? एक तो ये दुर्लभ मानुष्य देह, और दूसरा क्या है आगे लाइन? सत्संग। सत्संग मीन्स भगवान के भक्तों का संग लाभ। एक तो हम इतने अज्ञानी हैं, हमें ये पता नहीं है कि मैं सबसे रिच व्यक्ति हूं। क्या पता नहीं है? मैं सबसे धनवान हूं, और वास्तव में हम सबसे धनवान हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हम अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति हूं। और ये धन हमारे पास है, इसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है भगवान के भक्तों के द्वारा। जब हम भगवान के भक्तों के संगति में आते हैं तब हमें महसूस होता है कि मेरे पास असली धन क्या है, या कौन से धन की आकांक्षा करनी चाहिए। और वास्तव में सबसे पहले हमें हमारे पास सबसे मूल्यवान धन क्या है? यह मनुष्य शरीर है। और मनुष्य शरीर भी, और उसमें ये सुदृढ़ शरीर है, सारे अंग है इसके। अब रास्ते में जाओ, हाँ, जो भिकारी आदि हम लोग, आप देखो किसी के पास हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, आँख नहीं है, कितनी चीजों से कष्ट है। बल्कि हमें सदैव हाथ जोड़ के भगवान को रोज धन्यवाद देना चाहिए कि मेरे पास तो एक ठीक ठाक शरीर है, हाँ, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। एक्चुअली दुखी क्यों रहता है व्यक्ति? जब वो ऊपर देखता है, ऊपर उसके पास 100 रुपए है ना, मेरे पास तो 50 ही है, उसके पास 100, मैं दुखी हूँ, मेरे पास कितने होने चाहिए? 100। लेकिन हम देखेंगे कि यार नीचे लोग भी हैं जिनके पास 1 रुपया भी नहीं है, बारिश में उनके पास शेल्टर भी नहीं है, जिनके पास चलने के लिए पाँव नहीं है, एक समय का खाने के लिए नहीं है। यदि हम देखेंगे रोड, जहाँ आप देखो दिल्ली शहर में किसी भी जगह जाकर, तो हम समझ जाएंगे कि वास्तव में भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। और हम ये नहीं समझते, इसी कारण से जानना चाहिए कि सबसे पहला धन मेरे पास है वो ये शरीर है। इस धन को मैं देकर क्या खरीद सकता हूँ? भगवान की सेवा को खरीद सकता हूँ। इस शरीर के द्वारा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, वेदों का ये वाक्य है कि शरीर माध्यम है जिसके द्वारा धर्म को अर्जन किया जा सकता है, परचेज किया जा सकता है। इसी कारण से हम इतने अधिक भ्रम में हैं, अज्ञान में हैं, मूर्खता में हैं, हमें लगता है कि मेरे पास धन नहीं है, और सबसे बड़ा धन ये शरीर है जो वास्तव में दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है! जलजा नवलक्षाणी, जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के प्राणी हैं। हाँ, इतने सारे जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति, हाँ, क्रमया रुद्र संख्या का जो कृमि कीट आदि है वो 11 लाख, ऐसे अलग अलग विभाजन किया है, और उनमें से भी मनुष्य हैं 4 लाख। हाँ, 4 लाख मनुष्य में सारे लोगों के देवतागण वगैरह आते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं जो पृथ्वी पर जन्म लिए हैं भारत वर्ष में, वो सबसे महान भाग्यवान है, कहते हैं कि स्वर्ग के देवता भी ये इच्छा करते हैं कि कब हमें पृथ्वी में जन्म मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक चीज सरलता से होती है, वो है भगवान की भक्ति। सरलता से भगवान में मन लगाया जा सकता है। स्वर्ग आदि में तो भोग है, जहां भोग है वहां भगवान का स्मरण सरलता से नहीं हो सकता। ऐसे देवतागण हमेशा प्रार्थना करते, भागवतम में कहा है कि देवतागण नाचते हैं, प्रार्थना करते हैं, कामना करते कि कब हमें पृथ्वी में जन्म मिले और कब हमें भगवान की भक्ति करने का मौका मिले। ऐसे देवतागण इच्छा करते हैं। और हम पागल व्यक्ति सोचते हैं कि कब मैं स्वर्ग में जाऊंगा। रंभा, उर्वशी, मेनका, सोमरस का पान करूंगा, ऐसे हमारे डिजायर है। लेकिन देवतागण उससे क्या है, यहाँ आ रहे अमेरिकन्स, यहाँ आ रहे हैं भारत में वृंदावन में भक्ति करने के लिए, और हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, अमेरिका। इसको कहते हैं बहिर्मुख जीव। कौन सा मुख? बहिर्मुख। कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करें। कृष्ण के हम बहुत नजदीक हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, भगवान की ओर अपना मुंह नहीं किया, अपना मुखमंडल माया की ओर किया, अमेरिका की ओर। इसलिए हमें सामने दुबई, अमेरिका, चंद्रमा, वो सब दिख रहा है और कृष्ण नजर ही नहीं आ रहे। लेकिन बहुत सरल है, मुंह को क्या कर लो, इधर घुमाओ। और वो वहां के लोगों ने अपना मुख कृष्ण की ओर किया है, इसलिए वो बहुत फॉर्चुनेट है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि जो भारत में रह रहे हैं लेकिन भगवान की ओर जिन्होंने मुख नहीं किया है, उन्मुख नहीं है उनकी सेवा में, वो सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं, जिनके हाथ में रत्न है भक्ति करने का मौका, साधुओं की संगति, मनुष्य जीवन, ये महान रत्न हमारे हाथ में है। और ये रत्न हम क्या कर रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं। तो इस कारण से कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अज्ञानता के कारण हम उसको क्या कर रहे हैं, हम मिसयूज कर रहे हैं, बल्कि उसका वैल्यू हमें पता नहीं है। और वो वैल्यू कैसे पता चलता है, जब हम भक्तों के संगति में आते हैं। वैसे वो हमेशा एक स्टोरी सुनाते भक्त लोग कि एक बार एक व्यक्ति भारत में भगवद गीता पढ़ रहा था, मतलब खाया, उसने भोजन किया, हाथ न धोते हुए गीता को ऐसे पकड़ के पढ़ने लगा। तो ऐसे बैठा था बाहर पेड़ के नीचे, तो ऊपर से एक चील जा रही थी। चील जैसे ऊपर से जा रहे थे, देखा नीचे, अरे कहते कि कलयुग आ गया, कैसे लोग हैं बिना हाथ धोए भगवद गीता पढ़ रहे, कम से कम हाथ तो धो लो खाते हुए। तो जैसे वो चील ऐसा सोच रही थी, तो चील का अंडा गिरा ऊपर से नीचे, और नीचे बहुत सारी मुर्गियां थी। क्या थे? मुर्गियां। कितने सारे थे? बहुत सारे। वो मुर्गियों के बीच में वो अंडा गिरा, तो एक मुर्गियां जब बच्चे पैदा करती हैं, गांव में आपने देखा होगा, तो वो अंडों के ऊपर बैठती हैं, और फिर 15-20 दिन के बाद एक एक अंडा से एक एक चूजा जन्म लेता है। तभी ये अंडा भी आके उस मुर्गी के अंडों में मिक्स हो गया, और कालांतर समय के साथ उससे भी एक पक्षी ने जन्म लिया। अभी वो कौन था? चील था। किसके साथ रह रहा था? किसके, बोलिए जोर से, मुर्गियों के साथ। तो ऐसे चील जब उन मुर्गियों के साथ रह रहा था छोटा सा, तो अभी वो सब कुछ उसके हाव भाव चित्कार सब किसकी तरह थे? मुर्गी की तरह। अभी सब कुछ मुर्गी की तरह ही कर रहा था। तो वहां से एक साधु गुजरा, उसने कहा, अरे ये तो थोड़ा हटके नजर आता है, होता है ना, हटके चीज नजर आ गई। मैंने कहा ये क्या, मुर्गियों के बीच में चिल और ये भी मुर्गी की तरह ही व्यवहार कर रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको तो बताना पड़ेगा उसकी वास्तविकता क्या है। तो उसने उसको उठाया, ले गया अपने साथ, और उसको ऐसे ऊपर उड़ाया। वो उड़ नहीं रहा था, मुर्गी की तरह चिप चिप करते हुए फिर से गिर रहा था। उसने कहा इसके अंदर सारे मुर्गी के गुण आ गए हैं। फिर उसने क्या किया, थोड़ा सा पहाड़ पर ले गया, ऊंचाई पर उसको ले गया, उसकी गर्दन ऐसे पकड़ के आंखें ऐसे ऊपर कर दी, आकाश को देखो, किसको देखो, आकाश की ओर देखा, और ऊंचाई से ऐसे फेंका तो रियली छिल के भांति उड़ने लगा। हाँ, तो वो साधु ने क्या किया, उनको वास्तव में दिखाया या अवगत कराया कि आप मुर्गे नहीं हो। वैसी हमारी स्थिति है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेहतात पशु भी नराना। हम मनुष्य होकर भी किसके समान है? पशु के समान। कोई साधु मिलता है और वो कहता है, अरे आप तो दो पाव के हो, चार पाव नहीं लग रहे हो, आप अलग हो थोड़े से, हाँ चलो मंदिर आओ, गीता पढ़ो, हरि नाम का जप करो, थोड़ा अपने जीवन के बारे में, तब पता चलता है मैं चार पाव का पशु नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। किसको पता चला पहली बार हम आत्मा हैं? मैं जो फर्स्ट टाइम भगवद गीता पढ़ा, मुझे बचपन से पता नहीं था कि आत्मा वस्तु क्या है। जब गीता पढ़ा प्रभुपाद का, तब पता चला कि मैं कुछ और हूँ, आत्मा हूँ। हाँ, तो वैसे हमारी स्थिति है। जब ऐसे सत्संगे सत्संग में आते हैं तो हम जान पाते हैं कि यह मनुष्य जीवन बहुत ही क्या है, मूल्यवान है। और ऐसा मनुष्य जीवन का और लाभ हमें प्राप्त हो सकता है जब हम क्या करें, उस मनुष्य जीवन में साधु संग में करें। साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अभी साधु संग मतलब क्या? संग का मतलब ये नहीं कि साधुओं के साथ रहे, खाए पिए सोए उठे बैठे, नहीं, साधुओं के द्वारा भगवान के बारे में श्रवण करे, बस ये साधु संग है। मच्चित कथयन्तश्च माम नित्यम्, भगवान के बारे में चर्चा करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के सेवा एक साथ करना, ये क्या है? साधु संग है। बाकी चीजें साधु संग नहीं है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। मानव जीवन मिला है जिसके द्वारा, जो इतना मूल्यवान है, रेयर है, जिसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए साधुओं के संगति में, क्योंकि संग के द्वारा आप ऊपर उठ सकते हो या नीचे जा सकते हो। जैसे राजा है, एक राजा अपने सर में मुकुट धारण करता है और उसी क्षण जब हवा जोर से बहने लगती है और धूल उड़ने लगती है, तो जो धूल के कण है या धूल हवा का संग करके राजा के सर में जाके बैठते हैं, मुकुट में। देखो कितना अमेजिंग ना, ऊपर सीधा यहाँ, कौन बैठ सकता है राजा के सर में? लेकिन वही धूल जब पानी का संग करती है तो राजा के चरणों के नीचे। वैसे हमारा जीवन है, ये निर्भर करता है कि हम दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त करके कौन से संगति में बिता रहे हैं। पशु जैसे व्यक्तियों के संगति में बिताए तो हम सीधा नीचे रहेंगे नारकीय जीवन में, पशु के समान। और यदि हम भगवान के भक्तों का संग करते हैं तो हम सदैव क्या रहेंगे? ऊपर, राजा के मुकुट में जैसे बैठ सकते हैं। तो इसी कारण से शास्त्र कहते हैं, यहाँ ये कहा गया है सत्संगे। तो सत्संग से क्या होगा कि हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। तरह ये भव सिंदुरे, भव सागर में जो चार चीजों से बना हुआ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हाँ इनसे जो चीज बना ये संसार, ये भव सागर है। इनसे मुक्त होना, बाहर निकलना है, वास्तव में इस सागर से पार होना, और इसी को संसार चक्र कहा गया है। हाँ, संसार जिसका मतलब है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें घूमते रहना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहु दुस्तारे। बारंबार माँ के गर्भ में जाओ, फिर से जन्म लो, बूढ़ा हो जाओ, बीमार हो जाओ, फिर से नई माँ को ढूंढो, उसके गर्भ में जाओ, फिर से जन्म लो, फिर से जवान हो जाओ, बूढ़ा हो जाओ, ये किसने कहा है? शास्त्र कहते यही चक्र है। इस बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है नहीं, बस इस चक्र को मुख बंद करना है, इससे पार होना है। तो उसको पार होने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ साधन है सत्संग, भक्तों के संगति में आना। जिस प्रकार से आप यहाँ संडे आते हो, भगवान के बारे में जानते हो, भगवान अपने जीवन के बारे में जानते हो और भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हो, तो सत्संग में ये होना चाहिए। हाँ, तो उससे क्या होगा कि भौतिक सागर को हम सरलता से पार हो सकते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति अपने जीवन में वर मांगना चाहता है, भागवतम में वर्णन आता है कि राजकुमार थे प्रचेतास, उनके सामने भगवान विष्णु खड़े हो गए और उन्होंने कहा, प्रचेता हो राजकुमार, मांगो आप क्या चाहते हो। सोचो आपके सामने भी भगवान विष्णु आ जाए गरुड़ के ऊपर, तो आपको कहा जाए मांगिए, कुछ मांग सकते हैं। तो आप क्या मांगेंगे, क्या मांगोगे, क्या है आपका नाम, आपको नींद आ रही है? चलो, जनरली हम बहुत सारी चीजें मांगेंगे, लेकिन वो जो राजकुमार थे प्रचेतास, उन्होंने कहा कि हे कृष्णा, इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है ऐसे मरने वाले व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ हमने जन्म क्यों लिया है बताइए, क्यों लिया है, मरने के लिए। किसके लिए जन्म लिया है? हाँ, सारी चीजें मरने के लिए ही हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी मरने के लिए है। तो उन्होंने कहा कि इस संसार में जो मरणशील व्यक्ति है उस व्यक्ति को सबसे बड़ा वर कुछ है तो भगवत भक्ति संघर्ष की माता आशीषम, आशीषम इस आशीर्वाद। हे कृष्णा, इस संसार में व्यक्ति का सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है, आपके भक्तों का संगति का लाभ होना, बस वो उसके जीवन में है तो फिर सब कुछ है, इससे बढ़कर आशीर्वाद और कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, कृष्णा आप कुछ देना चाहते हैं तो आपके भक्तों का क्या मुझे प्रदान करो, संग प्रदान करो। इसलिए शास्त्र कहते, पुराणों में वर्णन आता है, संसार विषम वृक्षशः ह्यास्ते द्वे द्वे फले अमृतोपमे, कि ये संसार एक ट्री है, वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? ये विष का वृक्ष है। कितना हम कष्ट पाते हैं, ये संसार विष का वृक्ष है, लेकिन इसमें दो फल लगे हुए हैं और वो दो फल अमृत के समान है, और वो अमृतमय दो फल क्या है, कदाचित केशवे भक्ति तद भक्तः समागम, भगवान के प्रति भक्ति और उनके भक्तों का संग, बस इस संसार में ये दो अमृतमय फल है। हाँ, तो हमें इच्छा करनी भी है, या इस गीत में ये चीज की शिक्षा है। और वास्तव में मैंने कहा कि ये घाघर में क्या है, सागर है, और ये बहुत महत्वपूर्ण गीत है। तो आपको छोटा सा पर्चा मिला है, वो बाहर जाके फेंकने के लिए नहीं, यहाँ रखिए। जैसे जो प्रिय चीज होती है उसको हम कहाँ रखते हैं, हृदय में, दिल में नहीं, कहाँ रखते हैं, हृदय में रखते हैं। तो जैसे धन हमें बहुत प्रिय है तो कहाँ रखते हैं उसको, यहाँ। ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने भी पॉकेट की यहाँ बनाया, इधर नहीं बनाया, पेट के सामने। हाँ, मोबाइल भी प्रिय है तो हम यहाँ रखते हैं आजकल, तो ये हमें प्रिय है, इसको कहाँ रखना है, ऊपर। और फिर जब भी समय मिले थोड़ा सा याद करें, पहली लाइन याद हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चार, ऐसे ट्राई करो। हाँ, और फिर आपको क्या हो जाएगा, अगले संडे तक पूरा सॉन्ग याद हो जाएगा। हाँ, तो फिर आप समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से ये गीत है जो आगे के जो लाइन से हम फ्यूचर में कभी सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका अनुवाद वैसे बता देता हूँ। शीत आतप वात बरिशन ये दिन यामिनी जागिरे विफली सेवन कृपन दुर्जन चपल सुख लवलागिरे, कि वो कह रहे हैं कि मैं तो दिन रात सर्दी और गर्मी में, आंधी तूफान वर्षा आदि में पीड़ित हो रहा हूँ, और क्षण भर के सुख के लिए क्या कर रहा हूँ, ऐसे कृपन दुर्जन लोगों की सेवा कर रहा हूँ। कई बार व्यक्ति कई सारे लोगों की सेवा में लगा रहता है, इवन अपने पारिवारिक लोगों की सेवा में, यदि वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनको आनंद देने के लिए हम अपना जीवन क्या करते हैं, नारकीय बनाते हैं। कहते हैं ऐसे लोगों से मैं सुख की कामना कर रहा था, जिनकी सेवा के लिए मैं इतना दिन रात लगा पड़ा, सर्दी गर्मी वर्षा सबको सहन कर रहा था। ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे कि आछे परतीति रे कमल दल जल जीवन टलमल भज वो हरि पद नीति रे। ये धन, ये जगत का धन, यौवन, पुत्र, परिजन, ये सारे क्या है, मेरे वास्तविक सुख का, इनके द्वारा मुझे वास्तविक सुख प्राप्त नहीं होगा, और मेरा जो जीवन है वो उस बूंद के समान है जो कमल के पत्ते पर होती है और हमेशा टलमल करते, कभी भी गिर सकती है। वैसे ही हमारा मृत्यु क्या है, किसी भी क्षण आ सकती है। इसीलिए वो कहते भजव हरि पद नेतिरे, कि भगवान हरे की शरण ग्रहण करो, उनकी सेवा करो। और वो कैसे कर सकते सेवा, वो कहते श्रवणा कीर्तन स्मरणम पाद सेवनम वंदनम दास पूजन आत्मनिवेदन आदि से। वो कहते मेरी यही अभिलाषा है कि इस प्रकार से मैं भगवान की सेवा करूं।
और भगवान की सेवा शुरू होती है श्रवणम से, भगवान के बारे में सुनना, अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सुनना और कीर्तन करना। तो श्रवण क्या करना है, कृष्ण कथा और भगवान के नामों को हमें श्रवण करना है। भगवान का नाम माला पर जप करना है, जिसका जप करने से हम क्या करते हैं, भगवान के नामों को सुनते हैं और अपनी जीवा से क्या करते हैं, भगवान के नाम को बोलते हैं। तो इस प्रकार से श्रवण कीर्तन। तो ये आखिरी शब्द क्या है, गोविंद अभिलाष रे ना, क्या है, गोविंद दास अभिलाष। ये गोविंद दास की अभिलाषा है, इच्छा है कि ये मैं करूं। तो इस प्रकार से हमें इस गीत से सीखना चाहिए। तो आप सबको धन्यवाद, आपने सुना धैर्य के साथ। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री श्री राधा गोविंद देव की, गोविंद कविराज की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।